हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्रीयद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद, श्लोक नंबर 23। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, सत्सेवाया दीर्घयापि जाता मयि गृहमति, हित्वा वध्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि गृहमति, हित्वा वध्यमिमं लोकं गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वावविद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वावद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वावविद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वावविद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढामति हित्वावविद्यमिमं लोकम् गन्तामज्जन तामसि सत्सेवया अर्थात परम सत्य की सेवा के द्वारा अधीर्घया कुछ दिनों तक अपि भी जाता प्राप्त हुआ मयि मुझको दृढ़ा दृढ़ मति बुद्धि हित्वा त्याग कर अविध्यम शोचनीय इमं इस लोकम भौतिक लोक को गंता जाते हुए मत जनातम अर्थात मेरे पार्षद असी होते हैं। अनुवाद, कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त दृढ़ हो जाता है और उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच मध्यस्थ का काम करता है, नवदीक्षित भक्त में अपनी अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के पास तक जाने की शक्ति नहीं होती, अतएव प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वे भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक तक उन्नत होकर भगवान के मुक्त पार्षदों की संगति का लाभ उठा पाता है। मुखं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं। अत्यंत सुंदर भगवान नारद मुनि से वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें संसार के विषय में बता रहे हैं कि संसार में क्या करने से आपका कल्याण होगा और किस तरह से आप भक्ति में तीव्र इच्छा प्राप्त कर सकते हो और इस तीव्र इच्छा को प्राप्त करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। अत्यंत ही सुंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए ये शब्द हैं, जो कि नारद मुनि को उनकी तपस्या के बदले में भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान के शब्द हर किसी को इतना सरलता से सुनने के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। ये तो नारद मुनि है जिन्होंने इतना भक्तों का साधु संग किया और उनकी सेवा की, उनके उपरांत भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिया और उसके उपरांत भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि थोड़ा सा भी सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो वही शब्द एज इट इज हम भी सुन रहे हैं, है ना। वही शब्द जो भगवान नारद को कह रहे हैं, वही शब्द हमें श्रवण करने का भी अवसर मिल रहा है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, हो ना हो, कहीं ना कहीं हमारी भी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं, जिसके कारण भगवान हमें अपने शब्दों को सुनने के योग्य समझकर इन शब्दों को श्रवण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, पहले भगवान वास्तव में जीव का स्वाभाविक धर्म ही भगवान से प्रेम करना है। अब क्योंकि जीव समय के साथ जितने जितने भौतिक संसार में जन्म लेता रहता है और इस तरह से अपनी वास्तविक स्मृति को भूल जाता है, परंतु भगवान नहीं भूलते। भगवान सदैव याद रखते हैं कि ये मेरा अंश है और इसकी संतुष्टि केवल मुझे प्राप्ति कर, मेरी प्राप्ति के उपरांत ही संभव है। तो भगवान ये न के न प्रकार उस भुलक्कड़ जीव को याद दिलाने की चेष्टा करते रहते हैं कि कैसे मैं उसे याद दिलाऊं कि तुम इन भौतिक वस्तुओं से कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हो। और वही कार्य कर रहे हैं आज वो डायरेक्टली तो वो नारद मुनि को बता रहे हैं, परंतु इनडायरेक्टली वो हमें भी तो बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, है ना। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता है, क्योंकि वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज भगवान जो नारद मुनि को कह रहे हैं, वही बात वो हमसे भी कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे नारद मुनि को, जैसे कल भगवान ने बताया नारद मुनि को श्लोक नंबर 22 में, सकृत्य सकृत्य दर्शितं रूपं एतत् कामायते नः, कि क्योंकि एक बार तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब वो इसलिए दिए मैंने दर्शन कि तुम्हारे हृदय में इच्छा तीव्र हो, तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए मैंने तुम्हें ये दर्शन दिए। और इच्छा तीव्र होगी तो क्या होगा, मत कामाशन कैसा, जब मेरी प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगी तो सर्वान्वंशया, तो भौतिक जितनी हृदय के अंदर इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, आगे भगवान कहते हैं, सत्सेवया दीर्घयापि, सत्सेवया, सत का मतलब होता है परम सत की सेवा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि संसार में हर कोई सेवा से आनंदित होने का प्रयास करता है, हर कोई कार्य करता है दूसरों की सेवा करके, अगर नहीं तो ये न के न प्रकार अपने इस शरीर की सेवा करके ही आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवद गीता में बताया सत्य क्या है और असत्य क्या है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वयनोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान बताते हैं 2.16 में, ना सतो विद्यते भावो, जो असत्य है यानी यह भौतिक शरीर, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, यानी ये सदैव रहने वाला नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं, ना भावो विद्यते सतः, और जो वास्तव में सत्य है यानी आत्मा है उस वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी फना नहीं होता है। यानी कि भगवान सत्य किसको कह रहे हैं, जो इस भौतिक जगत में, मतलब सत्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन जो है वो सत्य है। और ये भौतिक जीवन क्योंकि ये हम आदि भौतिक शरीर और भौतिक वस्तुओं से निर्मित है, भौतिक संसार जो है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसमें कुछ सत्य नहीं है। सत्य का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो भगवान कहते हैं सत सेवया धीर गया भी, सत सेवया, जब आपको अभी हम सब जो सेवा कर रहे हैं वो सत्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, असत्य की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक शरीर से रिलेटेड वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़कर उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यदि वास्तविक सत्य पता चल जाए, वो कहाँ से पता चलेगा, वास्तव में केवल एक वैष्णव बता सकता है कि परम सत्य क्या है। और जैसे शास्त्र कहता है महावैष्णव, परम वैष्णव कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी से पूछा पार्वती ने कि भगवान कहते हैं सत सेवया धीर गया पी जाता मई दृढ़ामति, कि मेरे कुछ काल के लिए भी यदि कोई सत्य की सेवा करता है तो वो मुझ में स्थिर हो जाता है, मेरा पार्षद बन जाता है, तो वो सत्य है क्या। तो शिव जी बताते हैं पार्वती सच बताओ सत्य क्या है। तो बोला हाँ प्रभु बताइए। तो शिव जी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वास्तव में यदि कोई सत्य है तो भगवान का भजन है, भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान की पवित्र लीलाओं का श्रवण, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन और भगवान के भक्तों के साथ रहकर जो हरि कथा करते हैं, केवल वही सत्य है उमा। और इसके अतिरिक्त जीवन में जो कुछ है वो सब असत्य है। असत्य माना उसका क्षणिक प्रभाव प्राप्त होगा और वो भी दुखमय होगा ना। अगर लगेगा ऐसा कि यह प्राप्त करके, जैसे ऊंट होता ना, ऊंट वो जब झाड़ियों को खाता है तो उसके साथ साथ, क्योंकि झाड़ियों में कांटे होते हैं तो कांटे लगने के कारण उसके जबड़ों से, उसकी जिह्वा से ब्लड निकलता है और वो ब्लड जब वो खा रहा होता है ना झाड़ियों को, तब उसके अंदर जा रहा है तो उसको अच्छा लग रहा होता है। वो समझता है कि झाड़ियों का टेस्ट है, मगर उसे ये समझ में बात नहीं आ रही है कि ये तो टेस्ट नहीं, ये तो मेरा अपना ब्लड है, मेरा अपना खून है जिसके कारण मैं आनंदित होने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में भक्तों इस संसार में भी जीव ऐसे ही कर रहा है, दिन रात स्ट्रगल करके वो भौतिक आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। वास्तव में वो आनंद उसके अपने खून पसीने में उसको प्राप्त हो रहा है। सारा दिन जो केवल भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम कर रहा है, उस परिश्रम ये परिश्रम के कारण उसको थोड़ा सा आनंद मिल रहा है और वो बेवकूफ उस ऊंट की तरह समझ रहा है कि इस वस्तु में आनंद है। वास्तव में वो आनंद उसके अपने खून पसीने में है जिसको वो खत्म कर रहा है, अपना स्टेमिना जो कि उसको भौतिक जगत में केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। ये मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन में हमें भगवत प्राप्ति करनी है और इसी के लिए हमें भगवान ने यह स्वस्थ शरीर दिया है ताकि हम अच्छे तरीके से कर सकें, भगवत प्राप्ति में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन यदि हम इस जन्म में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंदित हो रहे हैं, यदि ऐसा फील कर रहे हैं, तो उसी ऊंट के जैसी हमारी भी अवस्था है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो भक्तो, नारद मुनि को कह रहे हैं कि भौतिक जगत की जितनी भी सेवा करो 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 करो, ना तो तुम्हें आनंद आएगा, ना संतुष्टि प्राप्त होगी, ना ही परम गति प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं, वो है अधीर गया, सत्सेवया अर्थात सत्य की सेवा और दीर्घ गया, इसे भी नहीं कि दीर्घ काल तक, कई कई जन्मों तक, कई कई ना बहुत सारे सालों तक, जैसे पहले होता था कि कई बहुत सारे सालों तक, बहुत सारे जन्मों तक लोग को सेवा करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान अभी बोलते हैं कि नहीं, अब वो समय खत्म, अभी ये महाप्रभु का दौर है। इसमें महाप्रभु महावदन्याय है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, केवल नाम जप मात्र से। महाप्रभु कहते हैं कि मैं उसका हाथ पकड़कर मैं खुद उसको इस भवसागर से पार करने में उसकी सहायता करूंगा। वो व्यक्ति जो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और प्रेम से जपेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु तो यहाँ तक कहते यदि एक बार भी ऐसा हुआ कि उसने अपने जीवन में निंदा नहीं की है और एक बार भी उसने भगवान के पवित्र नाम का जप किया तो मैं उसे वचन देता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे भगवान के पास लेकर जाऊंगा, मैं उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। इसे भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सत्सेवया दीर्घयापि, अगर थोड़ी से दिन के लिए, कुछ थोड़ी से समय के लिए भी, बहुत काल के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई सत्सेवया करता है, यानी भगवत सेवा करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तो आगे कहते हैं जाता मई। जाता का मतलब होता है प्राप्त होता है, मई माना मुझको, मुझे प्राप्त करता है, और इस तरह से उसकी बुद्धि, उसकी मति दृढ़ हो जाती है, भक्ति में लग जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके यदि संकल्प तो करे जीव, आने की इच्छा तो करे भगवत कथा और भगवत भगवान के नाम जप करने का, संकीर्तन करने का, साधु संग करने का, यदि थोड़ा सा भी उसे अवसर प्राप्त होता है तो सिंसियरिटी के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है, हम कथा में भी जाते हैं, भक्ति मतलब कीर्तन करने का भी यदि अवसर प्राप्त होता है तो मन में वही भौतिक विचार, या फिर वहां से संकीर्तन हो रहा होता है और हम आपस में बातें कर रहे होते हैं या कथा में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो फिर कृपा कैसे प्राप्त होगी। थोड़ा सा तो सिंसियर बनना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए वाकई में सत्य की सेवा यदि सच्चे हृदय से की जाती है तो थोड़ी सी भी की जाती तो भगवान कहते हैं तो मुझे प्राप्त करता है और दृढ़ामति और उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, बहुत यानी बुद्धि उसकी भक्ति में लगने लगती है और धीरे धीरे उसे ये पक्का विश्वास होने लगता है कि मेरे जीवन का कल्याण केवल इसी कार्य में है, मुझे केवल आनंद इसी वस्तु में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त सारी दुनिया में सारी वस्तुओं में आनंद खोज के देख लिया, सबकी सेवा करके देख ली, कहीं आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तो जब वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए सत्य की सेवा करने का वो प्रयास कर आरंभ करता है, अधीर गया, थोड़े दिनों में उसे पता चल जाता है, उसकी बुद्धि भक्त की बहुत दृढ़ हो जाती है और भगवान की सेवा में वो बहुत आनंद प्राप्त करता। और आगे भगवान कहते हैं हित्वावत्यमिमं लोकम्, हित्वा का मतलब होता है त्याग कर, वास्तव में भक्त हो, एक न एक दिन हमको त्यागना ही है, किसको, अवत्यम एमम लोकम, भगवान ने देखो इस संसार को कभी तो अवध्यम कहा और कभी दुखालयम कहा, भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे ये जगह तुम्हारे रहने की लायक नहीं है, एमम लोकम मतलब ये भौतिक जगत को भगवान कहते हैं अवध्यम, ये ऐसी जगह है जिसे जहाँ पर तुम्हें थोड़े समय के लिए केवल एक कार्य करने के लिए भेजा गया है कि तुम यहाँ पर आके मेरी भक्ति करो, सत्य की सेवा करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, तुम्हें इस जगह को त्यागना है और हमें भगवान संकेत नहीं दे रहे हैं, बार 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 चेतावनी दे रहे हैं कि ये जगह तुम्हारे रहने की नहीं है, ये जगह तुम्हें त्याग करनी है तो इस जगह में, लेकिन फिर भी जीव यहाँ पर आकर काम ऐसे करता है जैसे कि उसे कभी भी संसार से जाना नहीं है। बड़े बड़े बंगलोज बनाना, ये रूम वो रूम, बेडरूम ड्राइंग रूम, इतनी गाड़ियां खरीद करनी, इतनी एजुकेशन हासिल करनी, इतना वेल्थ, इतना भौतिक ऐश्वर्य उसको चाहिए। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि देखो ये जगह ऐसी है जहां पर तुम्हें भेजा गया है, वापस यहाँ पर तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इस जगह को त्यागना पड़ेगा। जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कहीं सुख से रहने नहीं दिया जाएगा तुम्हें, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी सेंटर के लोकों में भटकना पड़ेगा। जैसे किराए का घर, जिस किराए का घर होता है ना, उसे इस बात का बहुत अनुभव होता होगा। हर कुछ समय के बाद, 6 महीने के बाद, कोई 10 महीने के बाद वापस उसे वहां से निकाल देते, निकलो निकलो खाली करो, अभी हम यहाँ पर कोई दूसरे कस्टमर को रख रहे हैं, वो हमें ज्यादा किराया दे रहा है, फिर वहां से निकल कर दूसरे में जाए, अभी शिफ्टिंग करे अच्छे तरीके से, उसको समझ, मतलब सही तरह से उसको मेंटेन करे, घर को सेट करे, वापस से 6 महीने के बाद वहां से भी उसको निकाल दिया जाए, वापस से दूसरी जगह पर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटर में, कभी कहां उसको घर मिलता है, और वो घर अपना नहीं होता है इसलिए बार बार उसको वहां से निकालना पड़ता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि देखो इस भौतिक जगत में तुम किसी भी घर में रह रहे हो, मत समझना कि वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तो तुम्हें इस भौतिक जगत में चाहे जहां पर भी रहोगे तो तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। तो भगवान कहते हैं, लेकिन इतनी यहाँ पर भगवान हमें गुड न्यूज दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर, इतना आनंददायक भगवान वचन दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, मज्जनताम, मज्जनताम का मतलब होता है, भगवान कहते हैं वो मेरे पार्षद बन जाते हैं। मज्जन मेरा, जैसे बोलते हैं ना, ये किसका जन है, ये मेरा जन है, मेरा बच्चा है, मेरा पार्षद बनेगा। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि तुम थोड़े समय के लिए भी सत्य की सेवा करते हो, इससे तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाती है और उसी बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है जीव की, मुझ में स्थिर हो जाती है, और जिसके कारण वह इस शोचनीय दुखमयी जगत को त्याग कर उसके बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। कितना सुंदर भगवान प्रस्ताव दे रहे हैं। भगवान अगर यहाँ पर भी कहीं पर हमें ऐसा लगे कि भाई तुम थोड़े दिनों के लिए ये कार्य करो, उसके बाद तुम्हें अमेरिका में अपना फ्लैट मिलेगा और वहां पर अच्छे से तुम, या फिर कोई राजा बोले कि मैं अपने घर में तुम्हें जगह दूंगा, तुम यहाँ पर यदि अपने घर में रहकर थोड़े दिन के लिए मेरी सही तरह से सिंसियरिटी के साथ सेवा करो और उसके बाद राजा के घर में मिले, तो कितना ज्यादा आनंद आएगा। और वो जीव सोचेगा कैसे भी करके मैं इस राजा के घर में रहने के लिए ना मेहनत करूंगा, अच्छे तरीके से सिंसियरली करूंगा ताकि राजा प्रसन्न हो जाए और मुझे अपने घर में जगह दे। लेकिन यहाँ पर कोई राजा की बात नहीं हो रही है, त्रिलोकी के नाथ की बात हो रही है। वो बोल रहा है मैं अपना पार्षद, मत जनतामसी, मैं उसको अपना पार्षद बना दूंगा, अपने लोक में उसको, अपने दिव्य लोक में ले जाऊंगा। यह संसार में तो केवल दुखी दुख होते हैं, लेकिन यदि वास्तव में भक्तों, ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है, कितना हमारे लिए सौभाग्य है कि भगवान कहते हैं ये जो कितना गंदा जन्म है इस शरीर में, इस जन्म में कुछ अच्छा नहीं है, केवल हाड़ मांस पित्त कफ का बना हुआ रोगीला ये शरीर है। इस शरीर के द्वारा हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते सिवाय भक्ति के। जो कुछ भी प्राप्त करेंगे इस संसार में वो सब हमें दुखदायक, दुख प्राप्त करने, दुख प्रदान करने वाला होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि इसी से सुख प्राप्त होगा, चाहे कितने अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें या कितना ही अच्छे से अच्छा हम धन प्राप्त कर लें, जो भी, वो सब यहाँ पर छूट जाएगा, कोई साथ, कुछ साथ नहीं जाएगा, कोई रिश्तेदार, कोई भौतिक वस्तु साथ नहीं जाएगी, साथ जाएगा तो केवल वो सेवा जो भगवान की हमने की है, सत्सेवा। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़मति, वो मुझको प्राप्त कर देता है और भक्ति में दृढ़ हो जाता है। हित्वा वद्यमिमं लोकम, इस अभी इस अवध्य लोक को, शोचन्य लोक को जब त्याग देता है, गंता मज्जन तामसी, और वो मेरा पार्षद बन जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु भगवान ने सत्सेवया लिखा है ना, वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम कभी नहीं सोच सकते कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए, किस तरह से सत्य की सेवा की जाए। हो सकता है जो हमने जो निर्णय लिया हो वो सत्य ना हो, फिर तो वो वही सेवा भी जन्म मरण का कारण और बंधन का कारण बनेगी। तो इस सत्य सेवा को जानने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करनी है। जब तक किसी प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक हम सत्य की सेवा भी सच्चे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जो होता है, गुरु का सानिध्य जो होता है, वो हमें भगवत सेवा करने के लिए हमें ऐसा आशीर्वाद देता है जिसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपनी कोशिशों से हम कभी भी भगवत सेवा में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम इस भौतिक जगत में अपूर्ण इंद्रियों के साथ दिव्य सत्य को, दिव्य जगत के भगवान की सेवा को नहीं समझ सकते। हमारे पास ऐसा बल नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान के पास जा सकें। इसीलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण लेना होगा, यानी हमें शिक्षा लेनी होगी एक प्रामाणिक गुरु से। वास्तव में भक्तों, हम कितना सीरियस हैं यह हमें हमारे इस डिसीजन से ना पता चलता है कि हम कितना जल्दी गुरु स्वीकार करते हैं। एक प्रामाणिक गुरु, एक बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो कि हमें भगवत धाम तक ले जाएगा, उसको स्वीकार जिस दिन आप करते हैं ना, हम जब जीव कोई करता है तब उस दिन उसकी सिंसियरिटी का पता चलता है। हम उस दिन बात कर रहे थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के बारे में, पता नहीं मैंने बताया बुरा या नहीं बताया, अभी मुझे वापस से याद आ रहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को, जाओ आप गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा लेकर आओ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गए, बोला मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दे सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं, वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं। लेकिन फिर वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के हृदय में भी थोड़ा ऐसा शायद था कि वो नहीं दे रहे हैं, शायद वो योग्य नहीं है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो बहुत ज्यादा है ना शास्त्रों में बहुत ज्यादा प्रौढ़ थे, बहुत उनको शास्त्रों का ज्ञान था, और गौर किशोर दास बाबा जी के पास विद्या नहीं थी, उन्होंने एजुकेशन भौतिक एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी। तो फिर वो वापस ही चले गए, पिताजी को बोला वो तो नहीं दे रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, बोले मैं योग्य नहीं हूँ। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को, वो परम वैष्णव हैं, आप किसी भी करके उन्हें मना लो, उनसे दीक्षा ले लो, अगर नहीं लेते हैं, नहीं आपको दीक्षा नहीं दे रहे हैं वो, तो आप फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बहुत ज्यादा संजीदा हो गया कि वाकई में जब तक कोई वास्तविक शुद्ध भक्त मुझे स्वीकार नहीं कर लेगा, तब तक भगवान भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। हमारी भगवान हमें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये तभी हमें तभी इस बात का सबूत है कि जब कोई शुद्ध भक्त हमें स्वीकार करता है। जब तक कोई शुद्ध भक्त हमें स्वीकार नहीं करता, तब तक भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और बोला गुरु यशोदा बाबा जी को, वो एक है ना ब्रिज होता है ना जो, उसके ऊपर खड़े थे, और वहां से जब गौर किशोर बाबा जी गुजर रहे थे तो उनके चरणों में गिर गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। बोला गुरु महाराज मुझे स्वीकार कर लो, आप मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा मैंने आपको पहले भी बोला था ना मैं नहीं दे सकता, आप जाओ। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, आप मुझे धक्का देकर इसके अंदर गिरा दो, मैं मर जाऊंगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चलो ठीक है, नहीं करो आप मेरे लिए कुछ, लेकिन यहाँ खड़े होकर दो मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से अपना प्राण हत्या करना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या कर देना, क्योंकि वो शरीर वो जीवन जिसमें कोई शुद्ध भक्त मुझे स्वीकार नहीं करता है, वो जीवन जीकर मैं क्या करूं ऐसे जीवन को? क्योंकि अब जब आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे, फिर तो मुझे भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा? मैं मर जाना चाहता हूँ। और मेरे पिताजी ने भी मुझे यही कहा है कि शक्ल नहीं दिखाना, मैं तो ना घर का रहा, ना ही मतलब भौतिक जगत का रहा, ना फिर आध्यात्मिक जगत का, तो फिर जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तब गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, उन्होंने मुस्कुराया, बोला नहीं मानोगे ऐसे, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना देता हूँ। तो वास्तव में भक्तों, अगर कोई शुद्ध भक्त हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमें कैसे भी करके उन्हें रिझाना चाहिए, उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो हमें स्वीकार कर लें। और जब वो हमें स्वीकार करते हैं, तभी इस बात की गारंटी होती है कि एक न एक दिन भगवान भी हमें स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि शुद्ध भक्त, शुद्ध गुरु महाराज जो है, वो तब तक भगवान के पास नहीं जाते जब तक अपने सारे शिष्यों को भगवान के पास नहीं ले आने के योग्य नहीं बना देते। और जब कोई शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनके निर्देशन का, गुरु महाराज के आदेशों के अनुसार जब शिष्य थोड़े समय के लिए भी सेवा करता है, तो उसे ऐसी शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो इस भौतिक संसार में बाहर कंटिन्यूस वास करने से मुक्त हो जाता है, बार बार इसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता है, और आध्यात्मिक लोक तक उन्नति करके मुक्त हो जाता है, और भगवान के पार्षदों की संगति का लाभ उठा सकता है। कितना सुंदर प्रस्ताव है भगवान का। कृपया आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को दृढ़ कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्राप्त प्रसन्न कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।